जय श्रील प्रभुपाद। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्थाने उन्नद्धो अष्ट विभूति भी अमीने महाभागान स्तब्ध संभावित स्वतः। बड़ी स्थाने राज सिंहासन पर उन्नद्ध बहुत बड़े गर्व में हो गया। अष्ट विभूति भी अष्ट ऐश्वर्यों के साथ अवमेने अपमान करने लगा। महाभागान श्रेष्ठ पुरुषों का ब्राह्मणों का स्तब्ध किसी के सामने वो झुकने वाला नहीं था। संभावित अपने को बहुत बड़ा मानने लगा, स्वतः अपने आप। पढ़िए,
जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह आठ ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। तात्पर्य, इस श्लोक में अष्ट विभूति भी शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है आठ ऐश्वर्यों से। राजा को आठ ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योगाभ्यास के बल से राजा इन आठ ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे राजा राजर्षि कहलाते थे। योगाभ्यास के बल से राजर्षि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता था और मन वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता था। वह राज्य उत्पन्न कर सकता था, सबों को बस में करके उन पर शासन कर सकता था। यही राजा के कतिपय ऐश्वर्य होते थे। किंतु राजा बेन को योग का अभ्यास नहीं था, तो भी उसे अपने राजपद का घमंड हो गया। विचारवान न होने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और महापुरुषों का अपमान करने लगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
तो ध्रुव महाराज के वंश की कथा चल रही है। ध्रुव महाराज के वंश में कुछ पीढ़ी पीछे होकर के एक राजा हुए, उनका नाम था अंग, राजा अंग। बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए, बहुत महान। ध्रुव महाराज जैसे गुण उनमें थे, भगवान के भक्त थे और बड़े गुणवान थे। और उनका विवाह गलत स्त्री से हो गया था। गलत स्त्री मतलब वह मृत्यु की पुत्री थी। आठवें अध्याय में कथा है संक्षेप में। मृत्यु की पुत्री थी, उसका नाम सुनीता था। राजा बहुत बड़े महान थे, पर उनका विवाह इस स्त्री से हो गया था। इस कारण उनको जो पुत्र हुआ वो बहुत खल था। एक समय राजा अंग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते समय ऋतिजों ने कहा कि महाराज, आपके यज्ञ के हिंसा को भाग को देवता ले नहीं रहे हैं। किसी भी मंत्र के द्वारा उनको बुलाया जाता है, परंतु ये ले नहीं रहे हैं यज्ञ भाग। तो राजा ने उनसे परमिशन लिया कुछ बोलने के लिए। राजा मौन रहते थे यज्ञ में, यज्ञ जब तक चलेगा मौन रहते थे। लेकिन उन्होंने मौन भंग किया और ब्राह्मणों से पूछा, क्या कमी है, किस कारण देवता नहीं आ रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज यज्ञ में कोई कमी नहीं है, आपने सामान सब फर्स्ट क्लास का दिया है, ब्राह्मणों में भी कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण भी बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और शुद्ध हैं, और यज्ञ में जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वह भी बिल्कुल परफेक्ट है, परंतु एक दोष है आप में, आप बिना संतान के हैं, इसीलिए देवता आपके हाथ आपका दिया हुआ हव्य हवी ले नहीं रहे हैं। जिस गृहस्थ को पुत्र न हो या पुत्री न हो तो उसका जीवन अशुद्ध माना जाता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपसे एक यज्ञ कराएंगे, उसमें भगवान की कृपा से जब भगवान का पूजन किया जाएगा तो आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो पुनः उन ब्राह्मणों ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। उससे आहुति डालने से उस यज्ञ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, अपने हाथ में पायस लिया था, खीर लिया था, और उसने कहा ब्राह्मणों को कि इसे राजा को दे दे। तो राजा को दे दिया गया वो पायस, और वे ले करके अपनी स्त्री को दिए खाने के लिए। बहुत उचित मंत्र के साथ शुद्धि पूर्वक उसने खाया, उससे उसको गर्भ हुआ, उसी से उनको राजा अंग को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम हुआ वेन। हम लोगों के वैदिक इतिहास में ऐसा कंडन व्यक्ति, ऐसा अधार्मिक दुष्ट कोई नहीं हुआ जैसा वेन था। अधम वेन समान, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, वेन के समान कोई अधम नहीं हुआ। वो बचपन से ही बहुत पाप करता था, बच्चों को ले जाता था खेलने के लिए और उनको कुआं में फेंक देता था, बिना मतलब के पशुओं की हिंसा करता था, और जहां तहां लोगों के घर में आग लगा देना, मारना पीटना, यह उसका काम था। राजा का पुत्र था इसलिए उसकी धाक थी, और जिस गांव में निकलता था, जिस मोहल्ले में, हाहाकार मच जाता था, क्योंकि वह किसी को भी मारने लगता था जान से। राजा अंग उस पर शासन किए, जनता का गुहार सुने, उसको बस में करने की चेष्टा किए, लेकिन वो धीरे धीरे जवान हो रहा था, नहीं माना, हमेशा पाप करता ही रहा, विशेष करके हत्या। चूंकि वह मृत्यु के अंश से पैदा हुआ था तो स्वाभाविक ही हत्या की प्रवृत्ति थी, तो जनता के शिकायत से राजा अंग उब गए, रोज पाप करता ही था। तो एक दिन रात्रि के समय आधी रात को वे अपने भवन से उठे और जंगल में भाग गए। मंत्रियों ने खोजा, कुछ पता नहीं चला। मैत्रेय जी दृष्टांत दिए हैं, जैसे परमात्मा को सब लोग खोजते हैं लेकिन वे हृदय में ही रहते हैं, पर मिलते नहीं हैं, इसी तरह से राजा अंग राजधानी में ही किसी घर में छिप गए और मिले नहीं। अब इस बात का पता लगा चोरों को कि अब कोई सरकार नहीं है, राजा नहीं है, वे लोग जनता को लूटना पाटना मारना चालू किए। तो भृगु महर्षि सत्र में बैठे थे, उन सभी मुनियों ने विचार किया कि लोग पशु के समान हो गए हैं। ऐसे पशु किसी अन्य पशु को मारता है, खाता है, ऐसे ही हो गए। कोई राजा रहा नहीं, राजा के नहीं रहने से चोर डाकू स्वच्छंद हो गए और जहां तहां लूटपाट करने लगे, मारने लगे जनता को। तब मुनियों ने मीटिंग किया और कहा कि राजा बनाना चाहिए। तो महांग महाराज के पुत्र को बेन को उन्होंने चुना कि यही राजा की जोग है। प्रकृति अर्थात मंत्रिमंडल ना कर रहा था, प्रकृति सम्मतम, मंत्रिमंडल कह रहा था कि ये योग्य नहीं है ये राजा की। लेकिन फिर भी राजा की जरूरत थी। मुनिया ने सोचा एक राजा रहेगा तो जनता में सुख शांति रहेगी। तो मंत्रियों के न चाहने पर भी मुनियों ने उसको राजा बना दिया, अभिषिक्त कर दिया पृथ्वी की रक्षा के लिए, राजा बन गया। तो एक तो स्वभाव से ही खल था, परम दुष्ट था, और राज पद पर आसीन होने के बाद उसका गर्व और बढ़ गया और सारे अष्ट ऐश्वर्य से युक्त हो गया। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आठ सिद्धियां जो योगाभ्यास से प्राप्त होती है उसको मिल गई। में परंतु ये आठ सिद्धियां वास्तव में उसको नहीं मिली थी। वो सरकार के डिपार्टमेंटों को जो आठ विभाग में रहता है, जैसे सेना विभाग, अर्थ विभाग, जैसे मंत्री होते हैं गृह मंत्री आदि, तो इसी तरह से उसके आठ ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। राजतंत्र में राजा के अधीन ही ये सारी शक्तियां रहती हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण वही करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के द्वारा मंत्री चुने जाए, राजा स्वयं नियुक्त करता है। ये सेनापति रहेगा, ये कोषाध्यक्ष रहेगा, यह विभाग देखेगा, यह विभाग देखेगा, यह शिक्षा विभाग देखेगा। तो ये सब शक्तियां उसको प्राप्त हो गई। राज सिंहासन पर बैठते निरपस्थाने राजा के स्थान पर होने से उसका गर्व बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया, स्तब्ध, और किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। उस अभिमान के कारण वह महाभागान अवमेने, महान पुरुषों की, महात्माओं की, विशेष करके ब्राह्मणों की अवमानना करने लगा, अपमान करने लगा। वह अपने को बहुत बड़ा मानने लगा। राजा को नम्र होना चाहिए लेकिन वह नम्र बिल्कुल नहीं था। रथ पर चढ़ करके वह घूमने लगा अपने देश में। दिशा दिशाओं को, आकाश और पृथ्वी को कंपाने लगा, ऐसा उसका प्रताप था। जिधर जाता था उधर लोग कांपते थे। तो उसने भेरी घोष से, भेरी मतलब ढोलक बजा करके, आजकल कह सकते हैं बहुत बड़े माइक द्वारा, लाउडस्पीकर द्वारा राज्य में घोषणा किया, गांव गांव में, शहर शहर में, न जस्तव्यम, न दातव्यम, न होतव्यम द्विजा क्वचित। ब्राह्मणों को उन्होंने कहा, ये सब अनाउंस करवाया सब जगह अपने राज्य में, कहीं भी कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, विष्णु की आराधना नहीं कर सकता है, किसी भी देवता की पूजा नहीं कर सकता है, न दातव्यम, कोई दान नहीं कर सकता है किसी भी संस्था में, किसी भी देवता के लिए या विष्णु के लिए स्वयं कोई एक पैसा भी नहीं दे सकता है, ये मेरी आज्ञा है। सब जगह अनाउंस करवा दिया, कोई हवन नहीं करेगा, अग्नि में हवन नहीं करेगा। और जानता था कि इससे देवताओं का बल बढ़ता है, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं, कोई यज्ञ नहीं, पूरे राज्य में घोषणा कर दिया। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो बेन के समय में हुआ था वही इस समय हो रहा है। और कभी भी ऐसा संसार में घोषणा किया जा सकता है कि ईश्वर नहीं है, कोई भक्ति ना करे, भक्ति करने वालों को काट दिया जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत गलत समय चल रहा है, अतः शीघ्र से शीघ्र कृष्ण भावना भावित होकर के व्यक्ति को चाहिए कि वो बैकुंठ चला जाए, यहां न रहे, यह पृथ्वी रहने लायक नहीं है। प्रत्येक देश में बड़े नास्तिक लोग राजा बन रहे हैं और कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, कोई मंदिर में कीर्तन नहीं कर सकता है, रथ यात्रा नहीं निकाल सकता है, जन्माष्टमी नहीं मना सकता, रामनवमी नहीं मना सकता, कभी घोषणा हो सकती है। अतः यह समय आने से पूर्व ही भक्ति करके भगवान के पास चले जाना चाहिए। ऐसा अनाउंस कर दिया पूरा राज्य में, कीर्तन यज्ञ पाठ पूजा सब बंद हो गया। जनता की रुचि रहती है भगवान में, लेकिन राजा इस तरह जब मना कर दिया तो कोई कहीं व्यक्तिगत जप भी नहीं कर सकता था, कहीं भगवान का नाम नहीं, कहीं फोटो नहीं रख सकता था, ड्यूटी नहीं स्थापित कर सकता था। ब्राह्मणों को विशेष रूप से आज्ञा हो गई कि यदि किसी ने यज्ञ कराया, ड्यूटी स्थापित कराया या कीर्तन कराया तो उसकी खबर ली जाएगी। पूरे राज्य में यह ऑर्डर हो गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया। ऋषि लोग जो जनता का हित चाहते हैं करते रहते हैं, वे लोग जुटे एक जगह और विचार करने लगे। ये तो अद्भुत हो गया। राजा के अभाव में चोर बढ़े थे, चोरों को वो दंड देता था, चोर बढ़ गए थे जब राजा नहीं था, तो राजा बनने पर उसमें तो कोई विचार था नहीं, किसी को भी फांसी पर चढ़ा देता था, थोड़ी चोरी किया उसको कत्ल कर देना। तो चोर तो सब छिप गए, चोरी बंद कर दिए, लेकिन भगवान की भक्ति बंद कर दिया, इसलिए जनता में बड़ा शोक छा गया, सब लोग दुखी हो गए। भगवान के भक्ति के बिना कोई सुख नहीं है। ऋषियों ने विचार किया, ये तो बहुत गलत हुआ, हम लोगों ने इसको राजा बना दिया, मंत्री नहीं चाहते थे फिर भी हमने राजा बनाया, हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये तो ऐसी स्थिति है जैसे एक लकड़ी का दोनों छोर जलने लगे, प्रदीप्त हो जाए, और उस लकड़ी पर बैठी हुई कोई चींटी कोई कीड़ा, और वो उधर जाए तो उधर भी जलेगा, इधर आए तो इधर भी जलेगा, लकड़ी के दोनों सिरे में आग लगी है। तो राजा न रहे तो चोरों का उपद्रव, और राजा हो गया तो भगवान की भक्ति ही बंद कर दिया। अब क्या किया जाए, हम लोगों ने राजा बनाया है इसको, तो हम लोग उसको समझावे। मुनियों में भृगु जी प्रधान थे, भृगु वही ब्रह्मा जी के पुत्र जिन्होंने भगवान की परीक्षा लिया था, भगवान के छाती में जिनका चरण चिन्ह विराजता है, महर्षि नाम भृगु राम। भगवान कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूं, सबसे बड़े महर्षि महर्षि भृगु जी ने कहा कि ठीक है हम लोग चलें राजा के पास, तो जा करके उसको साम नीति से सिखाएंगे समझाएंगे, भक्ति मत रोको यज्ञ मत रोको, भगवान की आराधना मंत्रों को से समझाएंगे। पर कुछ मुनियों ने कहा कि वो मानेगा नहीं, भृगु जी ने कहा कि यदि नहीं मानेगा तो हमने ब्रह्म तेज किस तरह किस लिए है, अगर नहीं मानेगा तो हम अपने ब्रह्म तेज से स्वतेज सा उसको वहीं सिंहासन पर जला देंगे, हम मार देंगे केवल ब्रह्म साप से। तो सब मुनि लोग मिल करके गए राजा बेन के यहाँ उसके दरबार में, वो उठ करके प्रणाम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया ब्राह्मणों का। इन लोग गए और कहने लगे निरपा वर्ज निबत है तत् जत्ते विज्ञापयाम भव, हे राजन आप ध्यान से सुनिए, हम जो निवेदन करते हैं आपसे उसका पालन करने से आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तत् विवर्धनम, आपकी आयु बढ़ेगी हमारी बात मानने से, और आपका धन बढ़ेगा आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ध्यान से इसको सुनिए और इसका पालन कीजिए। तो उन्होंने प्रवचन किया, धर्म आचरिता पुंसान लोका नाम क्षेम लक्षण, समस्त मनुष्यों का हित करने वाला यह जो सनातन धर्म है इसका यदि आचरण किया जाए, वांग मनः काय बुद्धि भी, मन से वचन से शरीर से और बुद्धि से इसका यदि आचरण किया जाए तो लोकान विश्वकान वितरति, ये उच्चतर लोगों को देता है धर्म, और यदि इसका निष्काम अनुष्ठान किया जाए तो यह वैकुंठ दे सकता है। सते मां बेसेद वीरा, हे वीर, ऐसा धर्म आपके द्वारा विनष्ट नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए, होनी चाहिए, आपके द्वारा धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। जस्मिन विनष्टे निरपतिर ऐश्वर्याद अवरोहती, धर्म के नष्ट होने से राजा अपने ऐश्वर्य से गिर जाता है। यह अभी संकेत दिया ऋषियों ने कि यदि आपने धर्म में बाधा डाला तो आप इस पद पर नहीं रहेंगे, यह संकेत था। राजन असाधु अमात्यभ्य चौरा दिभ्य प्रजा निर्वाह, राजा का कर्तव्य है कि वह दुष्ट मंत्रियों से, असाधु अमात्यभ्य और चोरा दिभ्य और चोरों से जनता की रक्षा करे, रक्षा करते हुए उचित बलि अर्थात टैक्स ले करके जिए, उचित टैक्स ले करके जिए तो ऐसा राजा इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी आनंद से रहता है। जस्य राष्ट्रे पूरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषा इज्जते स्वेन धर्मेण जने वर्णाश्रमात वर्णा समान होते है। जिस राजा के राज्य में, पूरे स्टेट में और नगर में, गांव में, सब जगह भगवान की पूजा होती है, भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना होती है, तस्य पीतो महाभाग भगवान भूत भावना, समस्त जीवों का पालन करने वाले भगवान ऐसे राजा पर प्रसन्न होते हैं। ये सामान्य राजा की बात है, आप तो महाभाग हैं, आप तो महाराज ध्रुव के वंश में जन्म लिए हैं, महाराज अंग के पुत्र हैं। महाभाग है आपका, ऐसे वंश में जन्म लेना, ऐसे राजा पर जो प्रजा का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, भगवान विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। और भगवान के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है, तस्मिन प्रसन्न में किम प्राप्यम, क्या दुर्लभ है, सब सुलभ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ मिलता है भगवान के प्रसन्न होने पर। इसलिए आपका कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्म का आचरण करना। चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं, जनता को इन वर्णों में, इन आश्रमों में रखना और उनके अनुसार कर्तव्य कराना, ये आपका कर्तव्य है। जनता भी धर्म का आचरण करती है और राजा भी, तो राजा प्रजा दोनों भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। आपका कर्तव्य है धर्म का प्रचार करना, पालन कराना, आपको धर्म का नाश नहीं कराना चाहिए, करना चाहिए। इस तरह से ऋषियों ने समझाया बेन को, परंतु वह एक शब्द भी माना नहीं। उल्टे बोलने लगा, तुम लोग उस स्त्री के समान हो, कुलटा स्त्री जो ब्याही गई है और विवाहित पति से प्रेम नहीं करती है और विवाह से आउट किसी जार पुरुष से संबंध करती है। तुम लोगों का पालन कौन कर रहा है, कौन खेती करा रहा है, कौन पानी दे रहा है, बिजली आदि प्रकाश कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं ना, मैं राजा हूं, मैं पालन कर रहा हूं जनता का, तुम सब का। पर तुम लोग अधर्म में धर्म बुद्धि किए हो। धर्म असली है राजा की सेवा करना, कि राजा के शरीर में सभी देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण जमराज अग्निदेव पृथ्वी के देवता, ये सभी राजा के शरीर में रहते हैं। राजा सर्वदेवमय है। ऐसे राजा की बड़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, विष्णु की बड़ाई कर रहे हो। विष्णु कहाँ है? तुम लोगों को मैं ऑर्डर कर रहा हूं, यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी पूजा करो, मेरा जय बोलो और घर घर में मेरा चित्र रखो, मेरी डिट्टी बनाओ, मूर्ति बनाओ, विष्णु को और देवताओं को ठुकराओ, तब तो तुम पतिव्रता स्त्री के समान हो, और नहीं तो कुलटा स्त्री जैसे हो। दुष्ट कहेंगे, आए हो शिक्षा देने के लिए। जब इस तरह से उसने भगवान का अपमान किया, निंदा किया, तो ऋषियों को क्रोध आ गया, रूढ़ मन्यवा। पहले मैत्रेय जी कहते हैं वो लोग आए थे तो गूढ़ मन्यवा, उनका क्रोध छिपा था, अब क्रोध प्रकट हो गया भगवान की निंदा सुनते ही। वो यज्ञ पुरुषो नाम जतो भक्ति ऋद्धि, जिस विष्णु में तुम लोग इतनी भक्ति करते हो वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है? लेकिन अब सिखा रहा हूं, मुझ में दोष बुद्धि या द्वेष बुद्धि छोड़ करके मेरी पूजा करो। यह सुनते ऋषियों का क्रोध बढ़ गया, आंखें लाल लाल हो गई भृगु जी के स्वयं, और वे कहने लगे, हन्यताम हन्यताम। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, किल हिम, इसको मारो मारो, ये जीवित रहने लायक नहीं है। यदि यह दो चार वर्ष भी आगे जी गया तो ये सारे जगत को खा जाएगा, भस्म कर देगा, जला देगा, यह जीवित रहने लायक नहीं है, इसलिए इसको जितना जल्दी मार दिया जाए। यह सभी ब्राह्मण हुंकार करने लगे और उनके हुंकार से ही वह सिंहासन पर गिर करके मर गया, मर करके और लड़खड़ा करके गिर पड़ा। विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय से, राजा को ऋषियों ने मार दिया क्यों? मुनियों ने जिनको कृपालु माना जाता है, ब्राह्मण कभी अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करते हैं, क्यों उन्होंने राजा बेन को मार दिया? तो मैत्रेय जी उत्तर देते हैं, इसी अपराध के चलते, भगवान निंदा के चलते, विष्णु की निंदा किया इसलिए। तेजसी लोग मार करके चले गए अपने अपने आश्रम पर। ब्रह्म साप से अपने वचन से मार दिया। ब्राह्मणों को कोई अस्त्र उठाना नहीं पड़ता है, उनके वाणी में शक्ति होती है। मन से जो संकल्प करते हैं और वाणी से बोल देते हैं वो तो हो ही जाता है। तो राजा बेन जो इतना प्रतापी था सिंहासन पर मर करके गिर गया। ऋषि लोग अपने आश्रम चले गए। एक समय सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे ऋषि लोग, तो उन्होंने बहुत धूल उड़ते हुए देखा, दिशाओं में धूल उड़ रही है। तो लोग समझ गए कि जनता को लूटा जा रहा है, जनता भाग रही है गांव छोड़ करके, शहर छोड़ करके इधर उधर। तो उनके भागने से धूल उड़ रही थी। तो क्यों भाग रहे थे? क्योंकि डाकू चोर सबको मार रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, इसलिए इतनी धूल उड़ रही थी। तो ऋषियों ने पुनः विचार किया सभा करके। वे सभा में रहते ही हैं, सभा में भगवान की कथाएं होती हैं, सतकथाम चक्र, सतकथा में लगे थे। भगवान की कथा को छोड़ करके राजा बेन के विषय में सोचने लगे, इसको तो हम लोगों ने मार दिया, तो अब चोरों का उपद्रव बढ़ गया, सारा संसार सारा राज्य चोरों से भर गया। चोर प्रायम जनपदम, सारे जनपद चोरों से भर गए। अब क्या किया जाए, कैसे जनता का स्वस्ति होगा, कल्याण होगा, ये विचार करने लगे। संयोग की बात थी कि बेन की माता सुनीता पुत्र के मोह में पुत्र के शरीर को तेल के कड़ाही में रख दी थी, सौ सड़ने न पावे। इसलिए तो ऋषियों ने बाद में पता लगाया, देखा कि राजा बेन का शरीर सड़ा नहीं है, तेल में रखा गया है। तो उस शरीर को उन्होंने मांगा सुनीता से और विशेष वैदिक मंत्र के साथ उसके जांघ को मथना चालू किया, दोनों जांघ को। क्या विधि थी अब तो वही लोग जाने। मथने लगे, मथने से एक बहुत छोटा शरीर वाला व्यक्ति उत्पन्न हुआ, उसके बारे में तेज कहते हैं वह काक कृष्ण, कौवा के समान बिल्कुल काला था, अति ह्रस्वांग, बहुत छोटे छोटे अंग थे, हाथ छोटे छोटे, पैर छोटे छोटे, और उसकी नाक बिल्कुल चिपटी थी, ऊंची नहीं थी, चिपटी नाक। और जानू ए हनु ये बहुत चौड़ा था और आंखें लाल रंग की थी। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके ऋषियों से पूछा, मैं आपकी आप लोगों की क्या सेवा करूं, बहुत नम्रता से। तो उसके रूप को देखकर ही ब्राह्मणों को प्रसन्नता नहीं हुई, उन्होंने कहा बैठो निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ है बैठो, इसीलिए उसका नाम पड़ा निषाद। निषाद राजा बेन के पाप को लेकर के प्रकट हुआ था। निषाद, उसकी जाति के लोगों को निषाद कहा गया। ये निषाद वन के किनारे रहते हैं, वन में रहते हैं, नदी तट पर रहते हैं, और लोगों को लूटना पीटना ही उनका काम है, चोरी करना। राजा बेन का जो स्वभाव था वो स्वभाव ही इन लोगों में उतरा है। उसके बाद तो पृथ्वी महाराज का आविर्भाव होगा, जो दूसरे अध्याय में है, पंद्रहवें अध्याय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निषाद अत्यंत नीच जाति है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा निषादों का भी उद्धार हो रहा है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना को अपना करके पवित्र हो सकता है। माम ही पार्थ विपाश्रित्या यपि सिंह पाप जो नया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते पिजान्ति पराम गति। कोई भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, नीच ऊंच कुछ भी हो, भगवान की भक्ति करके पराम गति को प्राप्त कर सकता है, शुद्ध हो सकता है इस जीवन में भी, और बाद में पराम गति, परागति है, वैकुंठ प्राप्ति है, भगवान के धाम जा सकता है। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, भक्ति में ऐसा बल है कि कोई भी व्यक्ति पवित्र होता है और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में कई दृष्टांत दिए गए हैं। श्रील प्रभुपाद एक करके दिखाए अनेक किरात, हंड, आंध, म्लेच, यवन, स्पष्ट भाषा में कहिए मुसलमान, क्रिश्चियन, सभी पापी होते हुए भी भगवान की भक्ति करके पवित्र हो गए। कोई भी व्यक्ति पवित्र हो सकता है, अतः भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद।